أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 32 تک کا ترجمہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے تھے، یعنی متاع لکم ولی انعامکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، یعنی آواز ایسی جو کہ کان پھوڑ دے گی. تو اس آیت کے اندر فَإِذَا، فَا پہلا لفظ ہے، کیونکہ فا ایک حرف ہے اور عربی زبان میں ایون حرف بھی ایک کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو زبان سے نکلی ہو، منہ سے نکلی ہو انسان کے، یعنی کوئی بھی آواز جو کہ منہ سے نکلی ہو جس کا کوئی معنی معلوم ہو، ٹھیک ہے، معنی معلوم ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ منہ سے تو کچھ محمل قسم کی آوازیں بھی نکل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس کو کلمہ نہیں کہیں گے محمل آوازوں کو. لیکن اگر کوئی ایسی آواز نکلی جس کا کہ لوگوں کو معنی معلوم ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، تو حرف یہ بھی کلمے کی قسم ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جو فا ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے، ایک انڈیویجول ورڈ ہے، یعنی یہ عربی زبان کا. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ بس سے کر دیتے ہیں اردو زبان کے اندر، یا پھر سے بھی کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ اٹس بینگ یوز. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر سے کریں گے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے، یعنی اب اس کے بعد کیا ہوگا، اذا جاءت الصاخہ. اذا یہ اسم ہے، اسم ظرف جس کا ترجمہ جب سے کرتے ہیں. جاءت، جاءت فعل ہے، فعل کا ٹینس کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف. جاء اصل میں فعل ہوتا ہے، فعل ماضی جاء. جاء کو جب آپ ٹیبل میں چلاتے ہیں تو جاء جاء جاؤ جاءت، تو یہ ہے جاءت. تا کے نیچے زیر اس لیے لگا ہوا ہے کیونکہ الصاخہ کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھنا ہے، تو التقاء ساکنین جو انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، تو اس وجہ سے تا کے نیچے زیر لگا دیا. ادروائز یہ سکون والا تا ہے، یعنی تا سکون کے ساتھ ہے. تو جاءت، جب آئے گی الصاخہ. تو صاخہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تیز آواز ہو، اتنی زیادہ زوردار آواز ہو جو کانوں کو پھوڑ دے یا کانوں کو بہرا کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سور پھونکنے، یعنی اسرافیل علیہ السلام جو دوسری دفعہ سور پھونکیں گے نا، یہ اس والی آواز کی بات ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، ٹھیک ہے، جس دن کے بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے. تو یوم یہاں پہ دن کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن مراد ہے. اور اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں یفر المرء من اخیہ، یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں فرار اختیار کرے گا. یہ یفر کیا ہے؟ فرار اختیار کرنا، فرا یفر. ٹھیک ہے، فرا اس کا ماضی ہے، یفر اس کا مبارے ہے. ہفت اقسام جن لوگوں نے پڑھی ہے تو ان کو اگر یاد ہو کہ ہفت اقسام میں ایک قسم پڑھی تھی مضاعف. مضاعف الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جن کے اندر حروف اصلی ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر را ریپیٹ ہو رہا ہے، دو را ہیں اس کے اندر، فرارا یفررو. ٹھیک ہے، تو دو را ہیں، تو اس وجہ سے مضاعف ہے. تو तो रा को रामो फिर रा में फिर इदगाम कर देते हैं, तो ये जो ये फिर रू बन जाता है। इसका मतलब होता है फरार इख्तियार करना। कौन फरार इख्तियार करेगा? अल मरऊ। मरऊ आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मर्द के लिए, जैसे मर अतु औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्द के लिए उमूमन रजुल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन रजुल का मीनिंग जो होता है वो जरा एक अच्छे किस्म के मर्द के मानी रखता है अपने अंदर लफ्ज रजुल, ठीक है, यानी गैरतमंद मर्द और सही अच्छे काम करने वाला मर्द, उसको रजुल कहते हैं, ठीक है। मरउन जो है ये कोई भी मर्द हो सकता है, चाहे वो गैरतमंद हो चाहे बेगैरत हो, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, चाहे ईमान वाला हो चाहे मुशरिक हो, जैसे भी मर्द हो उसके लिए मरउन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कयामत के दिन तो फिर हर मर्द का ही एक जैसा हाल होगा ना, क्योंकि सारे के सारे जो है वो अपने अपने यानी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अपनी पड़ी होगी। तो अलमरओ का मतलब हो गया मर्द। मिन हर्फ जर, जिसका तर्जुमा से करते हैं। अखी, अखी सभी जानते हैं, भाई को कहते हैं, ठीक है, अखी ही उसका भाई, ठीक है। अखी का लफ्ज उसके साथ हा की जमीर जुड़ी हुई है जो उसका मुजाफ इलैही बन रही है, तर्जुमा इसका हुआ भाई उसका, ठीक है ना। तो कयामत के दिन मर्द भागेगा अपने भाई से, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह है कि भाई का तذکرہ किया, ठीक है, माँ से भागेगा ये बाद में आ रहा है, पहले भाई से भागेगा। वह उम्मी ही व अभी ही, और अपनी माँ से और अपने बाप से, इनसे भी भागेगा। वह साहिबत ही, और अपनी साहिबा से। साहिबा कौन होती है? साथ वाली, जो हमेशा लिबास की तरह साथ रहती है, बीवी, ठीक है, साहिबतुन, ठीक है, साहिब नहीं है, साहिबतुन है, क्योंकि यहां पर मर्द की बात हो रही है, और मर्द के जिमन में औरत भी आ जाती है। कुरान जब मुजक्कर का तस्करा करता है तो उसके अंदर मोनस भी शामिल हो जाते हैं, अगर कोई ऐसी जनरल बात हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो जनरल बात हो रही है ना कयामत के दिन की, तो आदमी की बात हो रही है तो उसमें औरतें भी शामिल हो गई। ऐसा तो नहीं है कि औरतें जो है वो मजे से खड़ी होंगी और आदमियों का तमाशा देख रही होंगी, राइट, वो भी भाग रही होंगी, वो भी नफसा नफसी के शिकार होंगी, लेकिन यहाँ पर मर्द का तस्करा किया। तो मर्द तो फिर अपनी बीवी से ही भागेगा ना, वो वाला मसला तो नहीं है जो कि आजकल लोगों ने बनाया हुआ है, मर्द मर्द वाला मामला, ठीक है। तो ये भागेगा अपनी साहिबा से, बेगम साहिबा, उससे भागेगा। वह बनी ही, और अपने बेटे से भी भागेगा, ठीक है, बनीन कहते हैं ना बेटे को, तो बनी ही अपने बेटों से भी, यानी बनीन की जमा बनी। एक मिनट, इसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने अपने एक एक नोट लिख लिया यहाँ पर। बहरहाल बनी ही का मतलब अपने बेटों से, ठीक है। लिकुल इम्रिम मिनहुम यौम इज़िन शानु युग्नी ही, हर मर्द को इनमें से उस दिन एक फिक्र लगी हुई है जो उसके लिए काफी है। तो कयामत के दिन मर्द का क्या हाल होगा? लिकुल इम्रिम, लाम हर्फ जर है जिसका तर्जुमा लिए होता है। कुल, कुल का मतलब एवरीवन, हर कोई, ठीक है, जैसे उर्दू में हम कुल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इम्रिन, ठीक है, तो इम्रिन जो है ये भी इम्राउन का मतलब भी होता है यानी मर्द, ठीक है, आदमी। तो कुल्ले की बात आने की वजह से ये इम्रिन हो गया, हालत जर में चला गया, वरना होता क्या है इम्रिउन, ठीक है, तो हालत जर में ये इम्रिन हो गया, मतलब इसका भी होता है आदमी यानी बंदा। मिनहुम उनसे, यौम एजन उस दिन, शानुई, शान का मतलब होता है यानी वैसे तो शान का मतलब होता है यानी हालत, ठीक है, यानी जैसे होता है ना कि जी इसकी क्या शान है, तो कहते हैं ना इसकी क्या हालत है, इसकी क्या शान है, किस शान से चला जा रहा है भाई, किस शान से चला जा रहा है, तो क्या मतलब होता है कि कैसी हालत से चला जा रहा है, क्या यानी शान वाली हालत है इसकी, ठीक है। तो शान का लफ्ज जो है वैसे तो बड़ा उसके अंदर तफसील बयान की जा सकती है, लेकिन अभी सिर्फ इसके मतलब जो है वो हालत ही अपने पास लिख लें। तो एक शान में होगा यानी उस दिन हर बंदा उनसे एक शान में होगा, युगनी ही जो उसके लिए काफी है। अगना युगनी इगनान का मतलब होता है गनी होना यानी बेपरवाह होना, ठीक है। तो युगनी का मतलब कि वो बेपरवाह होगा उससे, वो बेपरवाह होगा उससे, ठीक है। तो ये युगनी ही का लफ्जी तर्जुमा हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये है कि उसकी जो शान होगी ना वो उसको उससे बेपरवाह कर देगी, ठीक है, शान बेपरवाह कर देगी उस आदमी को अपने आप से, जो उसकी हालत होगी ना उस दिन कयामत के दिन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला अलग अलग लोगों की हालतें बयान कर रहे हैं कि जो दो ग्रोह में इंसानों को बांट दिया जाएगा, तो उनमें से एक ग्रोह होगा जिनकी हालत ये होगी कि वुजूहुन यौम इज़िम मुस्फिरा। वुजूह चेहरों को कहते हैं, ये वज की जमा होती है, वज मीनिंग एक चेहरा और वुजूह कई चेहरे यानी वज की जमा। तो वजूह यौम इज़न मुस्फरा, कितने चेहरे उस दिन रोशन होंगे, ठीक है। वजूह का मतलब हो गया चेहरे, यौम इज़न का मतलब उस दिन, मुस्फिरतुन का मतलब रोशन, ठीक अस्फरा युस्फिरु इस्फारन फहुआ मुस्फिरुन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रोशन होना, जैसे सुबह रोशन हो जाती है तो उस वक्त को कहते हैं कि इस्फार, ठीक है। जैसे हनफी फिक में फजर की नमाज कब पढ़ी जाती है, जब अच्छी खासी रोशनी फैल जाती है, तो उसको कहते हैं कि फजर की नमाज अहनाफ के नजदीक इसफार में पढ़ना ज्यादा अफजल है, ठीक है, और शवाफे के नजदीक अव्वल वक्त में पढ़ना ज्यादा अफजल है, ठीक है, क्योंकि अहनाफ के पास हदीसें मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फजर जो है वो डिले करके पढ़ते थे और सनराइज के करीब पढ़ते थे, तो उसको कहते हैं इसफार। इसफार का मतलब जब सुबह रोशन हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि असफर और युस्फरु इसफारन फहुआ मुस्फिरुन, तो मुस्फिरुन उसको कहते हैं कि जो कि रोशन हो, ठीक है, तो उसकी मुअन्नस मुस्फिरतुन हो जाती है, क्योंकि चेहरे जो है वो अरबी जुबान में मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, चेहरों का लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से मुस्फिरतुन यानी रोशन चेहरे, उस दिन कितने ही चेहरे रोशन होंगे। वाहिकतुन मुस्तबशिरतुन, वाहिकुन कहते हैं हंसने वाले को, इसलिए कि जहक जो है वो हंसना का मतलब होता है, जहका यजहकु, ठीक है, जहका यजहकु, ठीक है, जहका यजहकु समिया यस्माउ बाब से है ये, और इसका इस्म फाइल है वाहिकुन यानी हंसने वाला, और उसका मोनस क्या हो जाएगा, वाहिकतुन, क्योंकि चेहरों की बात हो रही है ना और चेहरों का लफ्ज अरबी जुबान में मौनस इस्तेमाल होता है, इस वजह से वाहिकतुन यानी हंसने वाले चेहरे होंगे। मुस्तबशिरतुन, ठीक है, ऐसे होंगे कि जो कि यानी बहुत खुश होंगे, बशारत, ठीक है, बशारत का मतलब होता है ना खुशी देना किसी को, तो ये भी बशारत से ही निकला, इस्तबशरा यस्तबशिरु इस्तिबशारन फहुआ मुस्तबशिरुन, ठीक है। तो मुस्तबशिरुन का मतलब कि जो कि बहुत खुश होता है, और चूंकि चेहरों की बात हो रही है इस वजह से मुस्तबशिरतुन, क्योंकि मोनस का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा चेहरों के लिए, तो हंसते हुए चेहरे होंगे और खुशियां मनाते हुए चेहरे होंगे, ठीक बशाश, हशाश, बशाश चेहरे होंगे, जबकि उसके बरअक्स कुछ चेहरे कैसे होंगे, वजूहुन यौम इज़न अलैहा गबरतुन, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे उस दिन, कुछ से मुराद यानी बाकी चेहरे, ये तो अच्छे चेहरे हो गए ना, बाकी चेहरे कैसे होंगे उस दिन, यौम इज़न का मतलब उस दिन, अलैहा उनके ऊपर, गबरतुन, गबरतुन का मतलब डस्टी, डस्टी जिनके ऊपर गर्द पड़ी हुई होती है, गर्द आलूद, ठीक है, गुबार आलूद, गर्द आलूद, गुबार का लफ्ज जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो गबरतुन का मतलब गुबार आलूद, गबरा यगबुरु, इससे गबरतुन का लफ्ज मुश्तक है। तरहकुहा कतरतुन, तरहकुहा कतरतुन, चढ़ी आती है उन पर स्याही, यानी ऐसे चेहरे होंगे कि वो काले भी हो चुके होंगे, सिर्फ गुबार आलूद से थोड़े से गंदे नहीं होंगे बल्कि काले हो चुके होंगे, स्याही छाई होती आ चुकी, छा चुकी होगी उनके ऊपर। तरहकुहा, रहिका यरहकु, रहिका यरहकु, इसका मतलब होता है स्याही छा जाना। तो तरहकुहा चढ़ती आती है, चढ़ी आती है उस पर स्याही, कतरतुन, कतरतुन कहते हैं गर्दो गुबार और स्याही को, ठीक है, कतरतुन का मतलब स्याही हो गया। तो तरहकु, तरहकु का मतलब, रहिका यरहकु का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर चढ़ आना, ठीक है, तो चढ़ आएगी उन उसके ऊपर स्याही, यानी इन चेहरों के ऊपर स्याही चढ़ाएगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरतु, यह लोग वही हैं जो मुनकिर हैं ढीठ, ठीक है, ये मारुफ कुरान में तर्जुमा ऐसे है। तो उलाइका ये इसम इशारा होता है जो कि जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कई लोगों की तरफ इशारा करने के लिए उलाइका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाजा होता है एक के लिए, उसी तरह उलाइका कई लोगों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हुम, ये हुमू नहीं है बल्कि असल में हुम है, ठीक है, तो हुम जो है इसका मतलब होता है दे, जैसे इंग्लिश में कहना दे, उर्दू में कहेंगे वो लोग, तो ये वो लोग हैं, अल कफरतु, ठीक है, कि जिन्होंने यानी कुफर किया, तो काफिर की जमा है ये असल में, कफरतु इसम, इसम है ये फेल नहीं है, ये कफरा फेल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि ये इसम है, कफरतु, ठीक है, ये काफिर की जमा बनती है, काफिरूना भी बनती है काफिर की जमा, और कफरतु भी काफिर की जमा बनती है। और अलफजरतु, फजरतु ये फाजर की जमा है, ठीक है, और फाजर कहते हैं बहुत ज्यादा गुनाहगार इंसान को, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा नाफरमान, जो कि गुनाह करता तो था लेकिन तौबा नहीं करता था, तो ऐसे शख्स को फाजिर कहते हैं, गुनाह पर इसरार करने वाला, तौबा ना करने वाला, उसको फाजिर कहते हैं, ठीक है। तर्जुमे के बारे में कोई सवाल? अच्छा, शाने नुजूल पढ़ लेते हैं, खुलासे तफसीर के अंदर, यहां से हम इसकी तफसीर पढ़नी शुरू करेंगे। अल्लाह, दुआ तो कर ली थी और खुतबा भी पढ़ लिया था, तो इस सूरत का या इन आयात का शान नुजूल क्या है? शान नुजूल कहते हैं उस पसे मंजर को जिसमें कोई कुरान की आयत या कुरान की सूरत नाजिल हुई हो, ठीक है, हदीस का पसे मंजर शान नुजूल नहीं कहलाता बल्कि शान वरूद कहलाता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम से ये वो हदीस मुबारक कैसे, किस पस मंजर में वारिद हुई है, और चूंकि आयत जो है वो नाजिल हुई होती है इस वजह से उसके लिए शान नुजूल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इन आयत के नुजूल का किस्सा यह है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज रुसाए मुशरिकीन को समझा रहे थे, ठीक है, रुसाए मुशरिकीन ये रासुन की जमा होती है, रास कहते हैं हेड को, ठीक है, यानी मुशरिकीन के सरदार, उर्दू में भी कहते हैं ना सरदार, यानी सर वाले, सरदार ये असल में फारसी का लफ्ज है, सर तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन दार जो है ये यानी घर के माने में इस्तेमाल होता है। सरदार जो है वो हेड्स को कहते हैं, अंग्रेजी में उनको हेड्स कहते हैं, ठीक है। तो रुउसाए मुशरिकीन का मतलब कि मुशरिकीन के सरदार या मुशरिकीन के हेड्स, ठीक है। तो लफ्ज हेड ही इस्तेमाल होता है वहां पर भी, ठीक है। अंग्रेजी में भी हेड का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और अरबी में भी रास का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सर। तो बाज रुसाए मुशरिकीन को समझा रहे थे, बाज रिवायात में उनमें से बाज के नाम भी आए हैं। अबू जहल बिन हशाम, जो कि इनका सबसे बड़ा सरदार था, बहुत ही ज्यादा दुश्मनी में सबसे आगे आ गया था नबी अलैहिस्सलाम की, अबू जहल। उतबा बिन रबिया, उबई बिन खलफ, उमैया बिन खलफ और शैबा, ठीक है। तो ये सब मशहूर सरदारान कुरैश थे, जो के यानी जिनके पीछे बाकायदा एक अवाम लगी होती थी, इनके खुद्दाम भी होते थे, इनके बेटे भी होते थे और लोग इनको अपना लीडर मानते थे। ये ऐसे लोग थे कुरैश में से। तो वो सब बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बात बता रहे थे, समझा रहे थे कि भाई क्यों तुम लोग मुखालफत कर रहे हो, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि तुम इसको जुटला नहीं सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह से उनको दावत तबलीग काम कर रहे थे कि इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम, नाबीना सहाबी, हाजिर हुए और कुछ पूछा। ये अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम, ये सहाबी जो हैं, एक तो नाबीना थे, दूसरा ये कि इनका नाम भी जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है दूसरों के नामों से, इसलिए कि दूसरे लोगों के नाम जो होते हैं वो उनके बाप से होते हैं ना, कि उमर बिन अब्दुल अजीज, ठीक है, अब्दुल अजीज का बेटा, लेकिन इनके बाप का नाम नहीं आता, बल्कि इनके इबन के अंदर ना आता है उम्मे मकतूम, मकतूम की माँ का बेटा, ठीक है, अब्दुल्ला जो के मकतूम की माँ का बेटा है। तो ये नाबीना साहबी थे, हाजिर हुए और कुछ पूछा कि यानी कुछ पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कता कलाम आपको नागवार हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे, इन्होंने या तो सुना नहीं होगा या समझे होंगे कि ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम जो है वो किसी से बात कर रहे हैं तो मैं बीच में कोई सवाल कर सकता हूँ, लेकिन ये कता कलामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इल्तिफात नहीं किया, ठीक है, यानी मुतवज्जे नहीं हुए, उनको इग्नोर किया, और नागवारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छीं बजी हुए, ठीक है, यानी बाकायदा नागवारी के असरात भी चेहरे मुबारक के ऊपर जाहिर हुए, जैसे कि पेशानी सिकुड़ जाती है, थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बन जाता है, नाराजगी वाला चेहरा बन जाता है। जब इस मजलिस से उठकर जाने लगे तो आसार वही के नमूदार हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सर्दी के मौसम में भी पसीने आ जाते थे, ठीक है। और आयशा सिद्दीका ने यह भी बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊँटनी पे बैठे होते थे और वही आ जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो पसीने आते ही थे, ऊँटनी भी बोझ की वजह से बैठ जाती थी, यानी इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोझ आता था कि ऊँटनी भी उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और बैठ जाती थी। तो इनको कहते हैं आसार वही के नमूदार होना। ये आयतें अबसा व तवल्ला नाजिल हुई, इसके बाद जब वो आपके पास आते आप बड़ी खातिर करते थे। हाजिर रिवायात कुल्लुहा दुर्रुल मंसूर, यानी ये रिवायात जो हैं वो दुर्रुल मंसूर हदीस की किताब है, उससे ली गई हैं। गर्ज वाकया मस्कूर के मुतालिक इरशाद होता है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीं बजी हुए और मुतवज्जे ना हुए इस बात से कि इनके पास अंधा आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नागवारी के असरात आए वो इस वजह से आए थे क्योंकि ये अंधे साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से बात कर रहे थे। तो यहाँ तो गायब के सीगे से फरमाया, ठीक है ना, कि अबसा व तवल्ला अंजाअहुल अमा, ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन के टेंस में फरमाया, गायब के सीगे से फरमाया। और ये मुतकल्लम के इंतहाई लुत्फ व करम, मुतकल्लम, ठीक है, मुतकल्लम बल्कि, ठीक है, यानी जो कलाम कर रहे हैं मुतकल्लम के इंतहाई लुत्फ व करम और मुखातब की तकरीम है। मुखातब उसको कहते हैं कि जिससे कलाम किया जा रहा हो, जो कि यहाँ पर नबी अलैहि सलाम है, और मुतकल्लम कौन है, अल्लाह ताला है। तो मुतकल्लम का लुत्फ व करम इंतहाई दर्जे का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था, यानी अल्लाह ताला का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अफजाई है इसके अंदर, कि रू दर रू इस अमर की निस्बत नहीं फरमाई, ठीक है, कि ये जो फरमाया ना कि तेवरी चढ़ाई उसने और मुंह मोड़ा, तो ये थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन में बात करते हैं ना, जैसे आप किसी को अगर डांटना चाहें तो डांटते हुए अगर आप उसको डायरेक्ट बात करेंगे सेकंड पर्सन में, तो ये बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि ऑफेंसिव तरीका होता है बात करने का। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन में बात करें, बेशक वो सामने मौजूद है लेकिन आप गायबाना अंदाज से उससे उससे बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना गिरा नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से बात कर रहे हैं कि गोया के थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी ये वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये ज्यादा शाक ना गुजरे, ज्यादा बोझल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना हो जाए। और आगे खिताब का सीगा बतौर इल्तिफात के इसलिए इख्तियार किया कि शुबा एराज का ना हो। ठीक है, क्योंकि तीसरी आयत के अंदर वमा युद्री का लअल्लहु यज़्ज़क्का। ठीक है, अब यहां पर ना अल्लाह ताला नसीहत शुरू कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो पहले जो थी वो एक यानी डांट तो नहीं कहना चाहिए अदब की वजह से, लेकिन पहले जो थी एक एक आप सल्लम के ऊपर तनकीद थी। ठीक है, एक आप सल्लम के जो का जो तर्ज अमल था उसके ऊपर एक तनकीद थी ना कि जी ऐसे किया आप सल्लम ने, तो वो थर्ड पर्सन में इस्तेमाल किया ताकि आप सल्लम के ऊपर शाख ना गुजरे, भारी ना गुजरे। ठीक है, अब यहां पर नसीहत फरमा रहे हैं तो नसीहत को जो है वो डायरेक्ट किया सेकंड पर्सन का टेंस इस्तेमाल करके। ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई इहतमाल ये ना रह जाए कि किसी और के बारे में फरमा रहे हैं या किसी और से कह रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि अब जो सीगा है वो बतौर इल्तिफात के इसलिए इख्तियार किया, यानी इल्तिफात का मतलब कि डायरेक्ट फोकस करके, कि एराज का शुबा ना हो कि भाई आप अल्लाह ताला जो है वो ये नहीं है कि जी अब नसीहत भी जो है वो भी एक थर्ड पर्सन के अंदाज में कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बात ही छोड़ दी। ठीक है, यानी शुबा और एराज का ना हो का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा नाराजगी का इजहार ना हो जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन में ही बात करना ये एक नाराजगी का इजहार भी होता है कि जी अब तो बातचीत ही छोड़ दी, अब तो थर्ड पर्सन में ही गायबाना ही कलाम हो रहा है। ठीक है, तो इसको फरमाया कि कहीं शुबा एराज का ना हो जाए कि अल्लाह ताला एराज कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर, शायद वो नाबीना आपकी तालीम से पूरे तौर पर खबर जाता। क्योंकि आपको बताया था तर्जुमे में कि यज़्ज़क्का का मतलब होता है पूरा तज़किया हो जाना। ठीक है, तज़किया हो जाना, पाकीज़ा हो जाना। तो ये फरमाए कि वो आपकी तालीम से पूरी तौर पर समझ जाता, या कम से कम किसी खास अमर में नसीहत कबूल करता, सो उसको नसीहत करना कुछ कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाता। औ यज़्ज़क्करु फतन्फ़अहु ज़िक्रा। ठीक है, जो वो पूछने के लिए आए थे अगर आप उनको जवाब दे देते तो हो सकता है जवाब देना जो है वो उनको फायदा पहुंचा देता और वो उस नसीहत को कबूल कर लेते। कबूल करने के बाद उस पर जब अमल करते तो फिर अमल करने से तज़किया भी शायद उनका हो जाता। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह ताला ने दोनों पॉसिबिलिटीज बयान कर दी, या तो वो उनका पूरा फायदा हो जाता या ये कि फायदे की इब्तिदा हो जाती। तो जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है आप उसकी तो फिक्र में पड़ते हैं। ठीक है, कि अम्मा मन इस्तग़ना फअंता लहू तसद्दा, तो आप तो उसकी बड़ी फिक्र कर रहे हैं जैसे कि दरपे पड़ गए, दरपे हो गए आप उसके, हालांकि आप पर कोई इल्जाम नहीं कि वो खबरें इसकी बेपरवाही जिक्र करके उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना देने की हिदायत है। यानी ऐसे बेपरवाह शख्स के ऊपर आप अपना फर्ज तो पूरा कर दें, ठीक है, कि आप उस तक पैगाम पहुंचा दें, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी फिक्र करने की और उसके पीछे लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी बहुत सारी हिदायत है ना, इसलिए कि हमें भी फिर ऐसे ही दावत तबलीग का काम करना है जैसे कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को करने की हिदायत की है। और जो शख्स आपके पास दीन के शौक में दौड़ता हुआ आता है और वो खुदा से डरता है, आप उससे बेइत्तिनाई करते हैं। ठीक, यानी अम्मा मन जा का यसा वहुआ यखशा फअंता अन्हु तलहा, आप उसे बेइत्तिनाई करते हैं। तो इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इन आयात में आपकी इज्तिहादी लग्जिश पर आपको मुतला किया गया है। मंशा इस इज्तिहाद का यह था, यानी नबी अलैहिस्सलाम चूंकि मुज्तहिद के दर्जे पर थे, ठीक है, अब जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा मुज्तहिद तो कोई है नहीं ना उम्मत के अंदर, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये तो बहुत छोटे लेवल के मुज्तहिद हैं नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया, यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करी। किस बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, नीयत की बेसिस पर और इल्म की बेसिस पर। ये दो चीजें होती हैं जो कि मुज्तहिद को मुज्तहिद बनाती हैं। एक तो उसकी नीयत खालिसतन अल्लाह की रजा होती है, दूसरी उसके पास इल्म की गहराई होती है, समझ होती है उसके पास, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके वो इज्तिहाद करता है, ठीक है। हम चूंकि इन दोनों चीजों से ही फारिग हैं, या तो हमारे पास, यानी हमारे पास तो अच्छी नीयत भी नहीं होती है और हमारे पास इल्म भी नहीं होता है, तो हम इस वजह से इज्तिहाद जो है वो उन उमूर के बारे में नहीं कर सकते हैं जिनका इल्म हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पास था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करी कि इस मौके पर ना इन लोगों से बात करना ज्यादा फायदेमंद होगा, और इसको तो अभी हम बाद में भी बात कर सकते हैं, इसलिए कि ये तो हमारा अपना बंदा है, ये तो पहले ही मुसलमान हो चुका है, ठीक है, तो ये बाद में भी आ जाएगा। तो ये इज्तिहाद था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस इज्तिहाद ये इज्तिहाद जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, ये आपका इज्तिहाद जो है ना गलत हो गया, ठीक है। तो इज्तिहादी लग्जिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतला किया गया है। मंशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इज्तिहाद का ये था कि ये अमर तो मुतयक्कन और साबित है कि अहम काम को मुकद्दम करना चाहिए। ये बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात क्लियर थी कि जो चीज ज्यादा अहम है उसको मुकद्दम करना चाहिए, यानी पहले करना चाहिए। आपने कुफर की अशदियत को, ठीक है, यानी कुफर जो है वो ज्यादा शदीद गुनाह है, उसको मूजबे अहमियत समझा। जैसे दो बीमार हों, एक को हैजा है और दूसरे को जुकाम, तो हैजे के मरीज का इलाज मुकदम होगा, ठीक है भाई। ईआर के अंदर जो आता है, जो कि मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, ठीक है, तो आप उसको ज्यादा तवज्जो देंगे कि कोई शख्स आपके पास जो है वो जुकाम लेकर के आया, ठीक है। हमने देखा कि जब किसी को ऐसी छोटी मोटी कोई बीमारी के सिम्टम्स नजर आते हैं, तो अगर वो ईआर चला जाए तो ईआर वाले उसको घंटों बिठा देते हैं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, कुछ लोग तो 8-8 घंटे ईआर में बैठा अपना इंतजार। और यहां पर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में हमने देखा है 8-8 घंटे लोगों ने ईआर में इंतजार किया है। क्यों भाई? इसलिए कि ईआर जो है वो इमरजेंसी केसेस, जो जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जो अर्जेंट केसेस होते हैं, उनसे भरा हुआ था, तो उनके पास बेड ही खाली नहीं था, ठीक है। तो भाई यही मामला है कि हैजे का किसी को हो जो कि इंसान की जान ले सकता है, और जुकाम का मर्ज हो, तो हैजे के मर्ज को जो है वो आप पहले तवज्जो देंगे। और अल्लाह ताला के इस इरशाद का हासिल ये है कि मर्ज की शिद्दत उस वक्त मूजब अहमियत है जब दोनों मरीज तालिब इलाज हो, तालिब इलाज, ठीक है, इलाज की तलब हो। लेकिन अगर मर्ज शदीद वाला इलाज का तालिब ही नहीं है बल्कि मुखालिफ हो, तो फिर मुकदम वो होगा जो तालिब इलाज है, अगरचे मर्ज उसका खफीफ हो, ठीक है। कैसी बात फरमाई, अजीब, राइट। क्योंकि जो दीन का काम करते हैं तो उनको इस चीज से वास्ता पड़ता है कि दीन का काम जो है ना वो क्या है, दीन का काम भी इलाज मुआवजे का ही काम है, राइट। इंसान जो है वो रूहानी तौर पर बीमार होता है, तो अगर वो दीन पर चलना शुरू हो जाए तो उसका इलाज हो जाएगा, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएगा इस दुनिया में भी, और आखिरत में भी उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बीमार शख्स जो होता है, तो अगर वो जिस्मानी बीमार हो तो वो तालिब इलाज होता है। देखें जितने डॉक्टर्स होते हैं, हमारे खानदान में डॉक्टर हैं माशाल्लाह, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, खानदान में डॉक्टर हैं, खानदान का हर फर्द उनके आगे पीछे घूम फिरता है, ठीक है ना। हल्का सा भी कुछ हो जाए ना किसी को, फौरन भाई साहब हमारे हैं डॉक्टर, उनको फोन करता है, ठीक है ना, और भाई साहब से कंफर्मेशन लेकर के किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। कोई दवा आती है, उस दवा को समझने के लिए फोन करते हैं, ठीक है ना, और अपना बच्चा बीमार पड़ जाए सबसे पहले भाई साहब के पास लेके जाते हैं, क्योंकि भाई साहब अपने खानदान के डॉक्टर हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दावत तो तबलीग का काम कर दे खानदान के अंदर, शुरू कर दे, ठीक है ना, इसलाह का काम शुरू कर दे, ठीक है, और दीन की तरफ बुलाने का काम शुरू कर दे, आप देखें कितने लोग उनको उनको लिफ्ट कराएंगे, कितने लोग लिफ्ट कराते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को लिफ्ट नहीं कराया खानदान वालों ने, ठीक है। हजरत खदीजा कुतुल कुबरा जरतानान कई सालों तक एक वाहिद थी जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात पर लबैक कहा था, ठीक है, अल्लाह के रसूल को लिफ्ट नहीं कराया लोगों ने। फिर एक एक करके अली रतान जो कि बच्चे थे उन्होंने लिफ्ट कराया, ठीक है ना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, बाकी खानदान जो है वो मुखालिफ, ठीक है, अपने चचाओं ने मुखालफत करी, चचाओं ने बात नहीं मानी, राइट। तो ये रूहानी मामला ऐसा ही होता है कि इसके तालिब नहीं मिलते, ठीक है, तो पहले जो है वो मेहनत कर करके तलब पैदा करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर के लोग आते हैं पूछने के लिए कोई चीज, ठीक है। तो इनका भी यही मामला था कि जो काफिर थे ये बीमार तो ज्यादा पड़े थे, लेकिन
लेकिन तालेब इलाज नहीं थे, ठीक है ना। और अल्लाह ताला है बहुत बड़े बागैरत, बहुत बड़े गैरतमंद हैं, क्योंकि ये जो दीन है ये अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, ठीक है। लेकिन जो इसको कमतर चीज समझता है, जो इसको गैर जरूरी सी चीज समझता है, तो अल्लाह ताला को फिर गैरत आती है, अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना अपने दीन वालों को फिर उस शख्स से मुंह मोड़ने का हुक्म देते हैं, जहां पर वही का मामला होता है, रसूल के साथ वही का मामला होता है, तो रसूल को कह देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, आप इनको तवज्जो ना दें, क्योंकि ये जो है मुखालिफ है आपके। और जहां पर वही का मामला नहीं होता है, तो वहां पर या तो दिल के अंदर कोई इल्हाम करते हैं, दिल में कोई इंट्यूशन डालते हैं, ख्याल डालते हैं, ठीक है, कि बस इस शख्स को बस सब इग्नोर करो, अब ये नहीं बात सुनने वाला है, ठीक है। वाजिबी तौर पर इस तक मैसेज तो तुम पहुंचा दो, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो, इसके ज्यादा पीछे ना भागो। या ये कि अल्लाह ताला कोई ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जो बेतलब होते हैं तो उनके लिए वक्त ही नहीं निकल पाता, ठीक है। जो बातलब होते हैं, चाहे दूर से आए हों, उनके लिए अल्लाह ताला वक्त निकलवा देते हैं, वक्त अवेलेबल कर देते हैं, और बेतलब हो, चाहे वो अपने खानदान के क्यों ना हो, उनके लिए वक्त ही नहीं निकल पाता, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की गैरत की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी अपनी गैरत दिखाई कि ये बेतलब लोग हैं, तो इस वजह से इनको आप ज्यादा तवज्जो ना दें।
जो बातलब है, अगरचे के वो अंधा है, अगरचे के वो गरीब है, अगरचे के मुआशरे में उसकी कोई वक्त नहीं है, लेकिन आप उसको ज्यादा तवज्जो दें, ठीक है। गैरत है ना, कितनी बड़ी गैरत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की गैरत से डरना चाहिए, अल्लाह ताला की गैरत से डरना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला मौके देते हैं ना, तो ये मत समझना चाहिए कि ये मौके हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से रहेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए मौकों को जब इंसान ठुकराता है ना, तो अल्लाह ताला को गैरत आ जाए ना, तो फिर वो मौके छीन लिए जाते हैं, ठीक है, फिर नहीं मौके मिलते। तो फरमाया कि लेकिन अगर मरीज शिद्दत वाला इलाज का तालिब ही नहीं है, बल्कि मुखालिफ हो, तो फिर मुकद्दम वो होगा जो तालिब इलाज है, अगरचे मर्ज उसका खफीफ हो। आगे इन मुश्किन की तरफ इस कदर तवज्जो जरूरी ना होने को इरशाद फरमाते हैं कि आप आइंदा हरगिज ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि कुरान महज एक नसीहत की चीज है और आपके जिम्मे सिर्फ इसकी तबलीग है। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाह अज़करा, ठीक है। तो आपके नजदीक जो है वो इसकी तबलीग है, तो जिसका जी चाहे उसको कबूल करे, उसको पढ़े, उसको समझे, उसको अपने ऊपर लागू करे, और जो कबूल ना करे वो जाने, आपका कोई जरर नहीं है। फिर आप इस कदर एहतमाम क्यों फरमाते हैं? नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई थी कि रहमतुल आलमीन थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ठुकता था, ठीक है, दिल के अंदर फिक्र होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी दूसरों की खैरख्वाही की वजह से, उनको जहन्नम के अजाब से बचाने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा उनके पास जाते थे। हमने अपने मशायख से सुना कि अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन था और कैसे कैसे तकलीफ पहुंचाई थी। नबी अलैहिस्सलाम अबू जहल के पास 3,000 मरतबा दावत लेकर के गए, 3,000 मरतबा, ठीक है। किसी मौर्रिख ने अपनी किताब में लिखा होगा, तो मशायख ने अपने बयान के अंदर बताया हमें, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर आगे से रोकते भी रहते थे, अल्लाह ताला फिर बार बार कुरान के अंदर ऐसा है कि क्या क्यों अपने आप को हलकान करते हैं, क्यों अपने आप को उनके पीछे जो है उतना लगाते हैं, तो फरमाए कि कुरान महज एक नसीहत की चीज़ है और आपके जिम्मे इसकी तबलीग है, तो जिसका चाहे उसको कबूल करे, और जो कबूल ना करे वो जाने, यानी वो जाने और उसका परवरदिगार जाने, ठीक है। परवरदिगार ने उसके उससे निपटना है, आपका ये मसला नहीं है, आपका कोई जरूर नहीं है। फिर आप इस कदर एहतमाम क्यों फरमाते हैं? आगे कुरान के औसाफ बयान फरमाते हैं कि वो कुरान लोहे महफूज के ऐसे सहीफों में सब है जो इंद अल्लाह मुकर्रम है, यानी ये सहीफे भी बहुत इज्जत वाले हैं, मुकर्रम हैं, इकराम वाले हैं, यानी पसंदीदा और मकबूल हैं, और रफीउल मकान भी हैं, क्योंकि लोहे महफूज तहतुल अर्श है, ठीक है। अर्श सबसे ऊंची जगह है, सब कुछ अर्श के नीचे है, ठीक है, यानी जन्नत, जहन्नुम, इल्लीजीन, सिज्जीन, आसमान, जमीन, सब कुछ अर्श के नीचे है, ठीक है। लेकिन अर्श के इमीडिएटली नीचे क्या चीज है? अर्श के इमीडिएटली नीचे जो है वो मकाम है जहां पर लोहे महफूज लिखा हुआ है, ठीक है। और जन्नत भी जो है वो वहीं करीब में है, लीन भी वहीं करीब में है, सिदरतुल मुंतहा का जो मामला है वो भी वहीं करीब में है, ठीक ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لوہے محفوظ کا جو بھی شکل ہے, جو بھی فارم ہے, وہ بھی وہیں پر ہے. کما فی الدر المنصور, سورۃ البروج میں ہم نے شاید پڑھا تھا اس کو. اور وہ مقدس ہیں, یعنی شیاطین خبیثہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. یہ خبیث شیاطین کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی جو ریبیلیس جنز ہوتے ہیں, کافر جن, وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کا قول ہی تعالی
لا یمسہ الا المطہرون,
ٹھیک ہے, کہ اس لوہے محفوظ کو کوئی یعنی صرف پاکیزہ لوگ ہی ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ واقعہ کی آیت ہے. تو لوہے محفوظ کے اندر ہی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لوہے محفوظ کو اور آسمانی کتابوں کو بھی جو اس کے اندر موجود ہیں صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہیں. یہ سب صفات اس کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں, جیسے کہ سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون میں بیان ہوا ہے. اور لوہے محفوظ ہرچند کے شیء واحد ہے, مگر اس کے اجزاء کو صحف سے تعبیر فرمایا. لیکن لوہے محفوظ ہے تو ایک رجسٹر, کوئی ایک ٹیبلٹ ٹائپ کی چیز ہے, لیکن اس کے اندر فردر سیکشنز ہوں گے, چیپٹرز ہوں گے, الگ الگ جگہ ہیں کہ جہاں پر کہیں پر جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز نوٹڈ ہے, کہیں پر کوئی چیز نوٹڈ ہے. تو اس وجہ سے اس کے اجزاء کو صحف سے تعبیر فرمایا. اور ان فرشتوں کو کاتب اس لیے کہا کہ یہ لوہے محفوظ سے بامر الہی نقل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کرام کاتبین جو فرمایا نا, کرام بررا قتل انسان مغفرہ, مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ, یعنی ہاتھوں میں لکھنے والوں کے, سفرتن تھا لکھنے والے. تو ان کو لکھنے والے کیوں فرمایا؟ اس لیے نہیں کہ یہ لوح محفوظ کو لکھ رہے ہیں, کیونکہ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھوایا؟ قلم کو حکم دیا. ٹھیک ہے, اور قلم نے لکھنا شروع کر دیا. اور قلم جو ہے یہ فرشتہ نہیں ہے, قلم ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے, جو کہ نہ فرشتہ ہے, نہ انسان ہے, نہ جن ہے, بس وہ قلم ہے. قلم کا مطلب ایک ٹول ہوتا ہے قلم. ٹھیک ہے, تو لوح محفوظ لکھا تو ٹول نے, ٹھیک ہے, کسی جاندار نے نہیں لکھا, کسی زی شعور نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو یہ فرشتے پھر کیا چیز لکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے لوہے محفوظ سے چیزوں کو کاپی آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کام لگاتے ہیں. تو کام لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بھئی لوہے محفوظ کے نا اس جگہ سے اس جگہ تک کا ایریا جو ہے یہ تم پڑھو اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لو. ٹھیک ہے, اور پھر اس یعنی یہ جو تم نے نوٹیفیکیشن اپنے پاس لکھی ہے تو اس کے مطابق تم ایگزیکیوشن کرو جا کر کے. تو یہ وہاں سے کاپی کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ 15 شعبان کے بارے میں جو احادیث ہیں تو ان سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ فرشتوں کو کام اسائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کام اسائن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوہے محفوظ سے نا چیزیں نکال نکال کر کے ان کو یعنی لکھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں کہ تم اپنے پاس ان کو لکھ لو کہ تم نے یہ کام اس ایک سال کے اندر کرنا ہے. تو ان فرشتوں کو کاتب اس لیے کہا کہ یہ لوہے محفوظ سے بامر الہی نقل کرنے والے ہیں. حاصل آیات کا یہ ہوا کہ قرآن من جانب اللہ نصیحت کے لیے ہے, آپ نصیحت کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, بس اس قسم کی تقدیم و تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے مقدم کر دیا, کسی کو آپ نے مؤخر کر دیا کہ جی وہ ہدایت پہ آ جائے اور یہ ہدایت پہ پہلے سے آ چکا ہے, تو یہ سب آپ نہ کریں. یہاں تک آداب تذکیر و تبلیغ کے ہوئے. آگے کفار کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے پر تشنیع ہے کہ منکر آدمی یعنی جو انکار کرنے والا آدمی ہوتا ہے جو ایسے تذکرے سے نصیحت حاصل نہ کرے جیسے ابو جہل وغیرہ جن کو آپ سمجھاتے تھے اور وہ نہیں سمجھتے تھے, تو ایسے شخص پر خدا کی مار کہ وہ کیسا ناشکرا ہے. قتل الانسان ما اکفرا, یعنی مار ہو اللہ تعالیٰ کی, مر جائے وہ ایسا انسان جس کے کیسا وہ ناشکرا ہے, ما اکفرا ہو. ٹھیک ہے, وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ, آگے جواب ہے کہ نطفہ سے پیدا کیا. آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ بہت سے انقلابات اور تغیرات کے بعد اس کی صورت بنائی,
پھر اس کے اعضاء کو اندازے سے بنایا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب آدمی اور عورت کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر نطفہ جو ہے وہ آدمی سے عورت میں جاتا ہے, پھر وہاں سے اس کا پورا پروسیس شروع ہوتا ہے, اور اس کے کچھ یعنی کافی عرصے کے بعد اس کے پھر اعضاء وغیرہ بننے شروع ہوتے ہیں. جب وہ گوشت کا لوتھا, خون کا لوتھا بنتا ہے, پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں, پھر اس کے کان بنتے ہیں, پھر آنکھیں بنتی ہیں, پھر اس کا سینہ بنتا ہے جس کے اندر دل بھی بنتا ہے اس کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے انقلابات اور تغیرات کے بعد ہوتی ہیں, جیسے کہ سورۃ القیامہ کی آیت فخلق فسوا میں گزر چکا ہے. پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا, چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے تنگ موقع سے اچھے خاصے تن و مند بچے کا صحیح سالم نکل آنا صاف دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے قادر اور عبد کے مقدور ہونے کی. ٹھیک ہے, تو یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ 6 پاؤنڈ کبھی بچہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی 6 کلو گرامس کا تو بچہ ہو جاتا ہے نا, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹوئنز ہوتے ہیں, کبھی ٹرپلٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کوڈروپلٹس ہوتے ہیں, 4 بچے, اللہ عالم کیسے وہاں سے نکل آتے ہیں, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر بات ختم عمر ختم ہونے کے, اس کو موت دی, پھر اس کو قبر میں لے گیا, خواہ اول سے خاک میں رکھ دیا جائے یا بعد چندے خاک میں مل جائے, کہ بالآخر اس نے قبر میں مل جانا ہوتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. مطلب یہ کہ سب تصرفات دلیل ہیں انسان کے داخلے قدرت الہیہ ہونے کے, یعنی انسان جو ہے وہ قدرت الہیہ کا ماتحت ہی ہے, وہ اس کے اوپر نہیں ہے. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے, اور یعنی داخل قدرت الہیہ ہونے کی اور نعمت بھی ہے, یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نعمتیں بھی ہیں, بعض حسی ہیں بعض معنوی ہیں, جس کا مقتضا تھا وجوب طاعت و ایمان. یعنی یہ نعمتیں جو ہیں وہ بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کہ باقاعدہ وہ فیل بھی کر سکتا ہے, اپنے 5 سینسز سے یا 6 سینسز سے فیل کر سکتا ہے, فزیکلی فیل کر سکتا ہے, اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو کہ وہ فزیکلی فیل نہیں کر سکتا لیکن اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر نعمتیں الہیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے حسی نعمتوں میں اور مانوی نعمتوں میں. جس کا مقتضا تھا وجوب اطاعت, یعنی اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور ایمان لے کر کے آتا, مگر اس نے ہرگز شکر نہیں کیا, ادا نہیں کیا, اور اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا. سو انسان کو چاہیے کہ اپنی خلیق کے یعنی تخلیق کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے کے بعد اسباب بقا و تعیش پر نظر کرے. ٹھیک ہے, یعنی جن چیزوں سے کی وجہ سے وہ باقی رہتا ہے اس دنیا کے اندر, اور جن چیزوں کی وجہ سے وہ عیش والی زندگی گزارتا ہے اس دنیا کے اندر, تو ان چیزوں کے اوپر دیکھے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور کرے, سوچے ان کے بارے میں, تو اپنے کھانے کی طرف نظر کرے تاکہ وہ باعث ہو حق شناسی اور اطاعت و ایمان کا, کہ بھئی یہ کھانا جو ہے یہ مجھ تک کن پروسیسز سے ہو کر کے گزرا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ایسے پروسیس, بلکہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ لکھا بھی ہے جو کہ ہم اسی کلاس کے اندر ڈسکس کر بھی چکے ہیں, کہ ایک نوالا جو انسان کھاتا ہے اس ایک نوالے کے پیچھے اگر ہم جا کر کے دیکھیں تو کتنا لمبا چوڑا پروسیس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے, اور کتنے سارے انسان اور حیوان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جب کہیں جا کر کے وہ نوالا ہماری پلیٹ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو کام میں لگا دینا ہمارے ایک نوالے کی تخلیق میں, یہ کس کے بس میں ہے؟ کون سی حکومت, کون سی اتھارٹی, کون سا نظام یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ذرا سی انسان اپنی عقل کو استعمال کر لے, غفلت سے باہر نکل آئے, ان چیزوں کے بارے میں سوچے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے سامنے کھل جاتی ہے. تو صرف کھانے کی طرف نظر کر دینے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹرز مل جاتے ہیں. تو حق شناسی اور اطاعت اور ایمان کا اور آگے نظر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا. پانی برسانے کا اگر آپ رین کے سسٹم کو سٹڈی کر لیں, پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا, کہ زمین پہ آپ بیج ڈال دیتے ہیں تو بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے, اس کے اندر سے ایک جاندار چیز نکلتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زمین کو پھاڑا, پھر ہم نے اس میں سے غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا. ٹھیک ہے, یعنی وہی زمین ہوتی ہے,
اسی زمین سے وہی پانی، وہی مٹی، وہی سورج کی روشنی، لیکن کیسے مختلف قسم کے اس کے اندر سے پروڈیوسز نکلتی ہیں. کسی کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کوئی کھٹی ہوتی ہے، کوئی میٹھی ہوتی ہے، کوئی سادہ ہوتی ہے، کوئی کیسی ہوتی ہے. ایک ہی جانور ہوتا ہے، وہ وہی چارہ کھاتا ہے، لیکن دودھ کی جگہ سے دودھ نکلتا ہے اور مینگنی کی جگہ سے مینگنی نکلتی ہے بکری کی. تو کھایا تو اس نے ایک ہی چیز. وہی شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ وہی پتے کھاتی ہے لیکن وہ شہد بناتی ہے، اور ریشم کا کیڑا جو ہے وہ وہی پتے کھاتا ہے لیکن وہ ریشم بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا عجیب و غریب قسم کی اللہ تعالیٰ نے فیکٹریز جو ہے وہ ہمارے چاروں طرف بکھیری ہوئی ہیں. کیا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پوائنٹ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے اوپر مجبور نہیں کرتی؟ لیکن ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی پڑ جاتی ہے، پٹی بن جاتی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی ان خواہشات والی زندگی سے توبہ کر لیں اور ذکر والی زندگی کی، یعنی دھیان والی زندگی کا ابتدا کر لیں توبہ کر کے. ٹھیک ہے، پھر ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ورنہ جب تک یہ نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سب کچھ ہونے کے باوجود. تو فرمایا کہ تمہارے اور بعض چیزیں تمہارے مواشی کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ سب بھی نعمت اور دلیل قدرت ہیں، اور اس مجموعے میں، یعنی اس مجموعے میں ہر جز مقتضا ہے وجوب شکر ایمان کو. ٹھیک ہے، یعنی ایمان کے اوپر شکر کرنے کے واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے. یعنی مقتضا ہے کیا مطلب؟ تقاضا کرتا ہے کس چیز کا تقاضا؟ کہ ایمان کے اوپر شکر کا واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تشنیع ہو گئی نصیحت قبول نہ کرنے پر. ٹھیک ہے، جس کو تان اور تشنیع کہتے ہیں نا، کہ کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم نے ابھی تک کچھ کر کے نہیں دکھایا. ٹھیک ہے، تو یہ تشنیع ہو گئی نصیحت قبول نہ کرنے کے اوپر. سب کچھ تو موجود تھا نصیحت کے لیے لیکن پھر بھی تم نے قبول نہیں کری. آگے عدم تذکر پر سزا، یعنی نصیحت قبول نہ کرنے پر سزا. عدم کہتے ہیں غیر موجودگی، ٹھیک ہے، یعنی نان ایگزسٹنس عدم کو کہتے ہیں. تو عدم تذکر کا مطلب تذکر کا نان ایگزسٹنٹ ہونا. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ نصیحت نہ قبول کرنا. تو نصیحت نہ قبول کرنے پر سزا، اور تذکر پر ثواب آخرت مذکور ہے. یعنی اگر نصیحت قبول کر لیا تو ثواب آخرت مذکور ہے. یعنی اب تو یہ لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں، پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت. اب بات شروع ہو گئی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب یہ صاخہ برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی قیامت. اس وقت ساری ناشکری کا مزہ معلوم ہو جائے گا. آگے اس دن کا بیان ہے کہ جس روز ایسا آدمی جس کا اوپر بیان ہے وہ اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا. بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ضرورت پڑھنے پر کام نہیں آئے گا، ہمدردی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، چند جو ہے جو بول ہوتے ہیں نا ہمدردی کے، جسے کہ انسان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اتنا بھی نہیں کرے گا. تو قوله تعالی لا یسأل حمیم حمیما، ٹھیک ہے، کہ کوئی یعنی دوست جو ہے نا وہ کسی دوست سے بات نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا. یہ تو کفار کا حال ہوگا. آگے مجموعہ مومنین اور کفار کی تفصیل ہے کہ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت سے خنداں شاداں ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی کدورت چھائی ہوگی. یہی لوگ کافر فاجر ہیں. کافر سے اشارہ ہے فساد عقائد کی طرف، اور فاجر سے فساد اعمال کی طرف. یعنی کافر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتا، فرشتوں پر یا ایمان نہیں رکھتا یا کتابوں پر، یعنی کوئی نہ کوئی عقیدہ اس کا فاسد ہوتا ہے یا سارے عقیدے اس کے فاسد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس شخص کو کافر کہتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے عقائد فاسد نہ بھی ہوں لیکن اس کے اعمال فاسد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اعمال برے کرتا تھا یعنی گناہ کرتا تھا، تو ایسے شخص کو فاجر کہتے ہیں. تو کفرۃ الفجر، کافر کا بھی ذکر ہے اور فاجر کا بھی ذکر ہے. تو کافر اور فاجر لوگ جو ہوں گے وہ اس دن یعنی مستبشرہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے جو چہرے ہوں گے نا وہ کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے نہیں ہوں گے، क्योंकि उन्होंने बे इंतहा गुनाह किए होंगे इस दुनिया के अंदर, और उनको पता लग जाएगा कि अब जो है ना इस गुनाहों के उनको सजा मिलने वाली है। अच्छा, तकरीबन टाइम मुकम्मल हो गया। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं सवाल के लिए, अदरवाइज मार्क मसाइल में से चंद चीजें पढ़ सकते हैं, चार चार 5 मिनट हैं। खैर, अगर कोई लिखेगा तो उसको देख लेंगे। मारिफ व मसाइल अभी मैं शुरू कर रहा हूँ कि शान नुज़ूल में जो वाक़िया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मकतूम नाबीना सहाबी का नकल किया गया है, इसमें बगवी ने ये रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु को नाबीना होने के सबब ये तो मालूम नहीं हो सका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे से गुफ्तगू में मशगूल हैं। मजलिस में दाखिल होकर आने सल्लम को आवाज़ देनी शुरू करी और बार बार आवाज़ दी। तफसीर मजहरी के अंदर ये इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर से नकल है, ठीक है। इब्ने कसीर की एक रिवायत में ये भी है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत कुरान पढ़वाने का सवाल किया और इस सवाल के फौरी जवाब देने पर इसरार किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्के के कुफार सरदारों को दीन की तबलीग करने और समझाने में मसरूफ थे, ठीक है। तो सहाबा कराम जब ईमान लेकर के आए थे तो अब ईमान लाने का मतलब ये नहीं था कि एकदम से उनको सारे आदाब आ गए हों, सारी चीजों के सही और गलत होने का पता चल गया, ठीक है। ये तो तदरीजन सहाबा को सिखाया था ना नबी अलैहिस्सलाम ने, हत्ता के कुरान की आयात भी नाजिल हुई सहाबा को अदब सिखाने के लिए, ठीक है, जैसे सूरह हुजरात की आयात हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर। तो इनको अभी इस किस्म के आदाब का या तो इल्म नहीं होगा कि नबी अलैहिस्सलाम को कैसे आवाज देनी है, कैसे बात नहीं करनी है, ठीक है, कैसे जा करके जो है वो खिताब करना है, और एक दफा जवाब ना मिलने के ऊपर खामोश हो जाना है, ये सारे आदाब अभी इन तक नहीं पहुंचे होंगे। और वैसे भी ये नाबीना थे तो इन तक इल्म और इन तक अहवाल का पता होना, पता चलना जो है वैसे भी जो है जरा कम होता होगा दूसरों के मुकाबले में, तो इस वजह से इनसे ये बेअदबी हो गई। और इब्ने कसीर की एक, हाँ, तो उन्होंने इस तरह पूछा, तो नबी अलैहि सलाम उस वक्त मक्के के कुफार सरदारों को दीन की तबलीग करने और समझाने में मसरूफ थे, ये सरदार उतबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हशाम और हजरत सल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु भी थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अब अब्बास रज़ियल्लाहु जो कि सगे चचा थे, तो जाहिर है इनकी हिदायत की फिक्र तो आप को बहुत ज्यादा लगी हुई होगी ना, क्योंकि शदीद मोहब्बत करते थे नबी सल्लम इनसे, ठीक है। और इसके कितने मामला आगे पता लगते हैं, जब ये मुसलमान हो गए थे तो इनके साथ क्या नबी सल्लम की मोहब्बत की कैफियात होती थी, तो कितनी फिक्र होगी इनकी। तो एक तबीयी बात थी, एक नेचुरल सी बात थी कि आप को इनका अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम का आकर के पूछना जिस तरीके से नागवार गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम का इस तरह खिताब करना और एक आयत के अल्फाज दुरुस्त करने के मामूली सवाल पर फौरी जवाब के लिए इसरार करना नागवार हुआ, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम रज़ियल्लाहु ताला अन पक्के मुसलमान और हर वक्त के हाजिर बाश थे, यानी मजलिस में आते रहते थे, दूसरे औकात में भी सवाल कर सकते थे, उनके जवाब के मुअख्खर करने में किसी दीनी नुकसान का खतरा नहीं था, बखिलाफ रुसाए कुरैश के कि ना ये लोग हर वक्त आपकी खिदमत में आते हैं और ना हर वक्त उनको अल्लाह का कलमा पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे थे जिससे उनके ईमान लाने की तवक्को की जा सकती थी, यानी कम से कम सुन तो रहे थे ना, तो इस वजह से एक उम्मीद बन जाती है कि भाई सुन रहे हैं तो हो सकता है मान भी जाए, और उनकी बात काट दी जाती तो ईमान ही से महरूमी उनकी जाहिर थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो थे इनका दिमाग भी बड़ा चढ़ा हुआ होता था, ठीक है। तो ये तो ऐसे थे कि जो कि नबी अलैहिस्सलाम से ये डिमांड करते थे कि आप हमारे लिए एक ऐसा वक्त मुख्तस कर दें कि जिसके अंदर कोई और ना आ सके, आपकी ये जो गरीब मुफलिस साथी है ना, ये उस मजलिस में आ ही ना सकें, आप हमारे लिए ऐसा टाइम सेट करें, क्योंकि हम सरदार हैं और हम अगर ईमान ले आएंगे आपके ऊपर ना तो आपके दीन को बड़ा फायदा होगा, ठीक है। इनका दिमाग इतना खराब था, जब ही अल्लाह ताला ने फिर इनके इस डिमांड के ऊपर सूरह कहफ की वो वाली आयत नाजिल फरमाई, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदुना वजहा, कि आप अपने आप को बांध के रखिए अपने उन साथियों के साथ जो कि अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं उसकी रजा की तलाश में, ठीक है। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और इन लोगों की बात ना मानिए कि जिनके कल्ब को अल्लाह ताला ने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, यानी इनकी इस सजेशन को आप ठुकरा दीजिए, आप इनकी इस डिमांड को या एडवाइस को ना आप इग्नोर कर दीजिए, इनकी बात हरगिज नहीं मानिएगा, वला तुते इनकी बात नहीं मानिएगा, ठीक है। तो इनका तो ये दिमाग का मामला था, तो भाई अब अगर आके सुन रहे थे ना बैठ करके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर है उम्मीद लगी होगी एक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उनके साथ ऐसा मामला किया। तो इन मजमूए हालात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उम्मे मक्तूम रहा तआला से रुख फेर कर अपनी नागवारी का इजहार फरमाया, और जो गुफ्तगु तबलीग हक की रुसाए कुरैश के साथ जारी थी उसको जारी रखा। इस पर मजलिस से फारिग होने के बाद के वक्त सूरह अबसा की आयात मस्कूरा नाजिन हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल को नापसंदीदा करार देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास को रोकते हैं। कुछ यानी एक एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो अगरचे कि हम अगली क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मौजूद हैं, क्या पता अगले मंडे को आप में से कितने मौजूद हो सकें, किसी कोई ना मौजूद हो सके, क्योंकि आपने ये सारी डिस्कशन अब सुननी है ना, तो अब ये एक एसेंशियल पॉइंट है, इसको भी सुन लें, ताकि शैतान जो है वो इस बात को जो अभी आपने सुनी है इसको जो है वो मैनिपुलेट ना कर सके अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ये बात गौर से सुने कि ये जो इस्लाह फरमाई जा रही है, ठीक है, ये इस्लाह फरमाने का मतलब ये नहीं है कि अब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम से भी जजमेंट की गलती हो सकती थी, ठीक है ना, आप से भी गलती हो सकती थी, तो आप से गलती जब हुई इस मामले के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है किसी और मामले में भी गलती हुई हो, कभी और भी गलती हो सकती थी, और अगर आप से गलती हो सकती है तो फिर इस दौर में कौन गलती से महफूज रह सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। यहां तक तो बात ठीक है, फैक्चुअली स्पीकिंग यहां तक तो बात ठीक है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, नबी अलैहि सलाम से भी इज्तिहादी गलती हो सकती है, और हुई जब तो ये सारी आयात नाजिल हुई, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें यह भी मद्देनजर रहे, बिल्कुल भी इंसान की नजर से यह बात नहीं हटनी चाहिए कि यहां पर बेशक गलती हुई, लेकिन यह याद रखना है कि यहां पर इस्लाह उस गलती की कौन कर रहा है, किसकी गलती हुई, किससे गलती हुई, और उसकी इस्लाह कौन कर रहा है, ये ऑर्डर भी याद रहना चाहिए, ठीक है। इस्लाह अल्लाह ताला कर रहे हैं और गलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, ठीक है। ऊपर वाला नीचे की इस्लाह करता है, नीचे वाले की इस्लाह करता है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले की इस्लाह नहीं करता, कर नहीं सकता, ठीक है। ये कहलाती है बेअदबी, ये कहलाती है गुस्ताखी, ठीक है, और ये जो गुस्ताखी और बेअदबी है ना, ये इंसान को ले डूबती है, ठीक है। अगर नीचे वाला ऊपर वाले की यानी शागिर्द उस्ताद की इस्लाह करने पर उतर आए, ठीक है ना, तो ये बेअदबी कहलाती है, और बेअदबी और गुस्ताखी जो है वो इंसान को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो बेशक उस्ताद से गलती हो सकती है, बेशक मशायख से गलती हो सकती है, उलमा से गलती हो सकती है, लेकिन अवाम उनकी इस्लाह नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके ऊपर डेमोक्रेसी आ जाएगी, भाई क्यों नहीं कर सकते, तो करनी तो चाहिए, वरना क्या नुकसान हो जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि इस्लाह नहीं कर सकते बेअदबी की वजह से, मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं अदब के साथ, लिहाज के साथ, और वो सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, ठीक है। तो मशवरा देने से इनकार नहीं है, मशवरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते भी थे, और कभी सहाबा बगैर मांगे भी मशवरा दे देते थे, ठीक है, लेकिन वो अदब के साथ होता था, वो इस्लाह नहीं होती थी। इस्लाह एक अलग चीज होती है, जैसे कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो इस्लाह का जो ऑर्डर होता है ना वो ऊपर से नीचे चलता है, ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं चलता। मशवरे का ऑर्डर जो है वो नीचे से ऊपर भी चलता है, ऊपर से नीचे भी चल सकता है, ठीक है। तो ये शैतान जो है ना इस तरह की बातें जहन में डाल सकता है कि हाँ जी ये तो फिर हम भी कर सकते हैं, और फिर कोई भी इसे यानी गलती से तो कोई भी मुबर्रा नहीं है, तो फिर हमें भी इस्लाह करनी चाहिए, जैसा कि देखो अल्लाह ताला ने इस्लाह करी। ये मॉडर्न डे फिनोमेना है जो कि बड़े इंसानों को उससे नुकसान पहुंचता है, और लोगों का दीन जो है वो बहुत खराब होता है। तो इंशाल्लाह इस बात को जरूर से याद रख करके फिर मजीद इंशाल्लाह अगले हफ्ते में पढ़ेंगे। आगे सवाल तो नहीं है कोई, तो क्लास खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।